ஓம் சாந்தி. சபி பாய் ஆராம் பேட்டே சபி தபியத் டீக் அச்சி ஜப் பட்டி மே ஆய ஹர் தின குச்சு நி பாத் மில் ரீ ஹை மன குஷ் ஹோரா அத்தேந்திரிய சுக உஸ்கா மீட்டர் ஊப்பர் ஜா ரா யா நீ ஜா ரா ஆஜ கி முரளி தி பத் அச்சி சுனி தி ஆப்னே தாதி ஜி சுனா ரே தே तो आज की मुरली में विशेष बात कौन सी थी, खास बात? बार बार बाबा ने उस बात पे ध्यान खिंचवाया. पहला लेसन पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, पहला लेसन कौन सा था? आप कौन हैं, मैं कौन हूं? हम आत्मा हैं. तो आज की मुरली में विशेष आत्म स्वरूप की स्थिति बार बार बाबा ने ध्यान खिंचवाया और उसके साथ में परमात्मा पिता की याद, दोनों बातों को अगर ध्यान में रखें तो उसको कहते हैं स्मृति स्वरूप. ऐसा स्वरूप अगर बन जाए तो सहज ज्ञान, सहज राजयोग सिद्ध होगा. जब सेंटर पे आना शुरू किया था तो बहन जी ने इतना ही बताया था कि आप यहां पर 7 दिन के लिए सहज राजयोग सीखेंगे और सहज ज्ञान सीखेंगे. तो सहज का अर्थ है सरल और सहज का अर्थ है नेचुरल, स्वाभाविक. जो चीज स्वाभाविक होती है उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती. हमें देखो, सुबह से शाम तक की शरीर को संभालने की जो दिनचर्या है, स्नान पानी से लेकर के भोजन पान और फिर उसके साथ में एक्टिविटीज, और जब एक्टिविटीज करते थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम, रात्रि विश्राम, वो सब करते हैं तो बड़ा स्वाभाविक लगता है. अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं हैं, आत्म स्मृति में नहीं हैं, शिव बाबा की याद में मन नहीं है, तो आप बताइए, सारा दिन बहुत बिजी रहते हैं. किसी से भी पूछो, चाहे कोई नौकरी करता है, चाहे कोई बिजनेस करता है, चाहे कोई समाज सेवा करता है, हर एक का एक ही जवाब होता है, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं. तो आपसे पूछ रहा हूं, आप भी ऐसे कहते हो क्या? बहुत बिजी हैं, बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं है, स्वयं को आत्मा निश्चय करने की फुर्सत नहीं है, ऐसा है क्या? थोड़ा आप सोच के बताइए, आठ घंटे, 24 घंटे में से आठ घंटे जो समझते हम बिल्कुल सिमरती स्वरूप बन के रहते हैं, आठ घंटे जरा हाथों खड़ा करो, चार पांच छ, अच्छा जो छह घंटे रहते हैं वो खड़ा करो, और छह बारह, जो चार घंटे रहते हैं वो खड़ा करो, पंद्रह और हैं बस। आप सोचिए भट्ठी में आए हैं आप सभी, चाहे कुमार हैं चाहे अनुभवी कुमार हैं, अदड़ कुमार नहीं कहते अच्छा नहीं लगता, अदड़ कुमार, अनुभवी कुमार, तो सभी भाई सेवा बहुत करते हैं, भागदौड़ बहुत करते हैं। सेंटर की बहन जी जो कहेंगी गुरु की आज्ञा समझ के फट से उसको पूरा करेंगे, उसके लिए नींद भी अपनी गंवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो बाबा ने अपनी बात कही है उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। जो सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जरा वो तो हाथ खड़ा करो, अच्छा इसमें आप सब पास हो गए, वेरी गुड। क्योंकि जिसने सवेरे सवेरे बाबा को नींद खुलते ही गुड मॉर्निंग की, तो उसका सारा दिन गुड ही गुड जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। तो ये एक ऐसी बात है जो मैं बहुत, कल करुणा भाई मेरे पास बैठे थे, वो कल ही वापस आए हैं विदेश से, वो सुना रहे थे कि बाहर भी भाई बहनों की रुचि तो बहुत है, बहुत ध्यान देते हैं, तपस्या करते हैं, सब है। कहता है मैं उनसे पूछा सारे दिन में नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस कितनी रहती है, तो हर एक जानता है कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते हैं वो सब भूल जाता है, फिर विशेष शाम के टाइम बैठ करके बाबा को याद करते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन अभी समय के अनुसार जैसा अभी का समय है, इसके अनुसार निरंतर, निरंतर का अर्थ तो सभी समझते हैं, हर संकल्प जो याद में है, एक संकल्प याद का है तो दूसरा संकल्प भी याद का हो, दोनों में कोई अंतर ना हो, उसको कहेंगे निरंतर। और मैं उसको समझता हूं वो एक हमारी स्वाभाविक आत्म स्मृति की स्थिति है, स्वाभाविक अभ्यास करते करते अपने आप को स्मृति दिलाते दिलाते ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति साक्षीपन का ज्यादा अभ्यास करता है। कारोबार सब करते हैं पर साक्षीपन ज्यादा उसका एक कहेंगे कि अभ्यास हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी अफेक्टेड नहीं होते हैं, थोड़ी सी बात से ध्यान इधर चला गया ध्यान उधर चला गया ऐसा नहीं होता है। अब उसको कोई बात, कोई भाई ऐसा भी समझे कि हमें तो आज के युग में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आत्म स्वरूप के अनुभव में रहना चाहते हैं, परमात्मा के साथ मन लगा के रहना चाहते हैं, तो उसके लिए तो बहुत माइंड की थॉट्स को स्लो डाउन करना पड़ता है। बहुत फास्ट चलाएंगे तो आप देखेंगे ज्यादा टाइम एक रस स्थिति नहीं बनेगी। एक रस स्थिति बनानी है तो बहुत ही अपने आप पर इस बात का अटेंशन चाहिए, और उसके लिए कुछ बातें हैं। अगर उस बात को लेकर के चलेंगे तो वो स्थिति बननी बड़ी सहज लगती है। पहली बात है कि हम आत्माओं का स्वधर्म ही शांति है। इस चीज को स्वीकार कर लेना, नहीं तो कई बार होता है थोड़ा सा कोई बात से अपसेट हो गए, नींद नहीं आएगी, फिर क्लास में बैठे पता नहीं कहां ध्यान चला जाएगा, क्या क्या सोचते रहेंगे। अब साकार बाबा तो सामने नहीं है, नहीं तो साकार बाबा के सामने अगर कोई ध्यान इधर उधर किसी का जाता था तो उसकी निशानी क्या थी, या तो ऐसे करके देखेंगे या उबासी लेंगे। तो बाबा कहते थे देखो इसको ये निश्चय ही नहीं है कि ये कौन मुरली सुना रहा है, मेरे सामने कौन बैठा है। इसको अगर निश्चय हो तो बहुत ध्यान से उसकी वैल्यू समझ करके कि बाबा जो एक एक ज्ञान रतन दे रहा है वो बहुत वैल्यूएबल है, उसको बड़े ध्यान से सुने, उसकी गहराई को समझें, तो वो नहीं होता है। तो देखा गया है कि जब किसी बात में दिलचस्पी नहीं होती है तो फिर ख्यालात कहां के कहां चले जाएंगे, उबासी आएगी, थकान लगने शुरू हो जाएगी, और फिर बीच में देखेंगे अभी मेरी तरफ कोई देख तो नहीं रहा है, उठ करके चल देंगे, क्लास से बाहर चले जाएंगे। तो ये बात बहुत अभी समझने की है, देखने की है, जानने की है कि हम सब बाबा के बच्चे भी हैं, बाबा के ईश्वरी स्टूडेंट भी हैं। तो स्टूडेंट्स जब स्टडी करते हैं तो बड़े अलर्ट रहते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं। अगर अलर्ट नहीं रहेंगे, आजकल के जमाने में जैसे है, बच्चे उस समय अलर्ट नहीं रहते हैं, फिर उनकी ट्यूशन रखनी पड़ती है, खर्चा माँ बाप का ज्यादा होता है फिर। तो ये यहां तो वो बात नहीं है, यहां बाबा ने आज से लेके कह दिया बच्चे इस ईश्वरी ज्ञान और योग से आप क्या बन सकते हो, कितना ऊंचा लक्ष्य दे दिया। कभी सोचा भी नहीं था, सोचा था कभी आपने कि हम ऐसा श्रेष्ठ बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, श्री नारायण जैसा बन जाएंगे, श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे। जो राम बनना चाहते हैं जरा हाथ खड़ा करो, एक भी नहीं। अरे राम की इतनी पूजा होती, इतना लोग उसकी मान्यता करते हैं, पर एक हाथ सिर्फ खड़ा है। अच्छा आप राम बनेंगे हैं? सोच लो। अच्छा बहुत अच्छा, तो श्री कृष्ण जैसे बनेंगे, श्री नारायण जैसे बनेंगे, अर्थात आप सर्व कला संपूर्ण बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, अहिंसा परमो धर्म बनेंगे। तो कई बार ये सवाल उठता है भाई साहब चार्ट में क्या लिखें, अपने चार्ट में क्या लिखें। तो यही बातें लिख लो आप। हाँ, एक पहली पॉइंट सर्वगुण संपन्न, दूसरी पॉइंट लिखते जाओ, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, देखते जाओ क्या क्या है। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मैं धीरे धीरे बोलता हूं। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, पांच बातें हैं। अहिंसा परमो धर्म। अब एक एक को अच्छी तरह से क्लियरली अपने माइंड में उसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। जब उसकी डेफिनेशन क्लियर होगी, उसकी गहराई बुद्धि में होगी, तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं। सर्वगुण संपन्न अर्थात कोई गुण की कमी नहीं है। देवताओं का जो स्वरूप है उसको इमर्ज करना है। जितनी कलाएं हैं, भिन्न भिन्न कला होती है, सोलह कला जो कहते हैं, सोलह कला, सोलह प्रकार के डांस भी होते हैं। तो अपने को देखना है कि मेरे अंदर कोई कला है या नहीं है, एक है या दो है, दो है या चार है, होनी तो सोलह चाहिए। उसके बाद है सबसे बड़ी बात, सभी जानते हैं हम बाबा के बने हैं तो पहले दिन से हर एक ने निश्चय कर लिया कि जो मेरे योग्य चीज नहीं है वो मुझे मन से त्याग देनी है। सबने त्याग दिया है ना, पांच विकारों को सबने त्याग दिया है, सबने त्याग दिया है मन से। किसी को अभी भी अगर मन में गुस्सा आता है तो जरा हाथ तो खड़ा करो, वाह बहादुर बहुत हैं कई अभी भी। मन में आएगा तो मुंह में आएगा, मुंह में आएगा तो हाथ में आएगा, फिर कर्म का श्रेष्ठ कर्म बनेगा या विकर्म बन जाएगा, क्या बनेगा। तो इसलिए इतनी महीनता से अपने ऊपर अटेंशन रखने की बात है कि कोई भी बात में कुछ भी हो जाए, बाबा के महावाक्य हैं, कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए पर आपके चेहरे की मुस्कान ना जाए कभी। तो चेहरे की मुस्कान कब नहीं जाएगी, जब आप संपूर्ण निर्विकारी होंगे। मन तक आपने विकारों को जीता हुआ होगा तब आपकी मुस्कान सदा कायम रहेगी। जैसे श्री कृष्ण के जितने भी चित्र कहीं पर भी देखेंगे आप, भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में, हर जगह पर श्री कृष्ण जैसी मुस्कान आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? उसके मन में कोई भी विकार नहीं है, पावन पावन है। तो जितना पावन पावन है उतना सरलता है उसमें, जितनी सरलता है तो सहज रीति से मन खुश रहता है, दिल खुश रहता है और वो होंठों पर आ जाता है, नैनों पर आ जाता है, मुस्कान नजर आती है वो प्रैक्टिकल में। तो इसलिए अपनी विशेष चेकिंग, क्योंकि ये जो टॉपिक आज दी है मेरे को वो बड़ी अच्छी टॉपिक है कि बाप समान ट्रस्टी और विदेही स्थिति, तो ट्रस्टी तो सभी बन जाते हैं कि ये हम बाबा के ट्रस्टी हैं। लेकिन ट्रस्टी के साथ साथ कभी कभी ये भी कह देते हैं भाई हम तो गृहस्थ में रहते हैं, खासकर जो मैरिड लाइफ में है, जो अनुभवी कुमार हैं वो कभी कह देंगे भाई हम तो देखो दुनियादार हैं ना, दुनिया में रहते हैं क्या करें। वास्तव में देखा जाए तो हम सभी आत्माएं इंडिविजुअल अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ठीक है दूसरों के संबंध में आते हैं, घर वालों के संबंध में आते हैं, तो वहां पर भी अगर आप अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहेंगे, हमारा स्वाभाविक स्वरूप क्या है, नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस। नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस में नेचुरल प्रेम स्वरूप है, नेचुरल आनंद स्वरूप है, नेचुरल एक दो की रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत आराम से चल पाएंगे, चाहे कुमार हैं चाहे क्या कहें अनुभवी कुमार हैं। तो ये पांच विकारों को महीनता से अपने अंदर देखना है। जब हम महीनता से उसको अच्छी तरह से देख करके उस पर विजयी होंगे, एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए मैं विजयी आत्मा हूं, बस एक ही पक्का अपने अंदर पक्का करना है, मैं कौन हूं, विजयी आत्मा हूं। जब विजयी आत्मा है तो उसको किसी बात का डर नहीं रहे, फिर आपको कोई छू नहीं सकता है, कोई विकार छू नहीं सकता है, कोई नेगेटिविटी आपके मन में नहीं आ सकती है। तो अपने सच्चे स्वरूप में अपने आप को देखना ये बहुत जरूरी है। किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, फिर काहे का डर है इस दुनिया का, फिर काहे का डर है ये माया का, फिर काहे का डर है पांच विकारों का, कोई डर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पक्का करना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सर्वशक्तिवान पिता के बच्चे कौन है, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर माना बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान के सामने ड्रामा नहीं करते हैं माया और प्रभु का, कैसे माया भीगी बिल्ली की तरह चली जाती है वहां से। क्या मेरा कोई भी हथियार काम नहीं करता है, तो ये बात आपको पक्की करनी है कि हम बाबा के विजयी बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, और उस नाते से अहंकार भी नहीं चाहिए, बड़ी नम्रता से, बड़ी विनम्रता से अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, दिल ही दिल में बाबा को थैंक्स देना चाहिए, बाबा आपने तो कमाल कर दिया, हमको क्या से क्या बना दिया, स्वप्न में भी नहीं सोचा था, पुरुषार्थ करते थे अपने आप को अच्छा बनाएं, सच बोलें, झूठ नहीं बोलें, कोई ऐसा कर्म हमसे ना हो जाए जो पछताना पड़े, पहले ऐसे कहते थे। लेकिन आप देखेंगे इतनी ना शक्ति थी, मनोबल भी नहीं था, ना इतना ज्ञान था, नहीं तो ज्ञान का बल भी होता है तो भी आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, तो ज्ञान का बल भी नहीं, और फिर इसके साथ में मनोबल भी नहीं। तो ये बातें अच्छी तरह से जब हम सोचते हैं तो आता है कि बाबा के बनने के बाद अभ्यास के फलस्वरूप, बिना अभ्यास तो कोई चीज मिलती नहीं है। आज किसी को ग्रेजुएशन भी करनी है तो पहली क्लास से लेकर के 14-15 क्लास तक पढ़ना पड़ता है, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, अभ्यास करना है, उसको जबानी सब याद होना चाहिए, उसके अनुसार बुद्धि में सब बातों का एक चित्रण हो जाता है। तो आपने क्या लक्ष्य रखा है जीवन का, क्या जीवन का लक्ष्य रखा हुआ है, क्या बनना है, क्या बनेंगे? हाँ, देवता तो बनेंगे सभी, अंडरस्टूड है, सभी देवता बनेंगे, पर देवता सतयुग आद के होंगे या सतयुग के अंत के होंगे? कब के होंगे? सतयुग आद के होंगे तो हाथ खड़ा करो, वाह, ताली बजाओ अपने लिए। तो जिनको सतयुग के आद के देवता बनना है, उनको इस बात पे ध्यान देना है कि स्वाभाविक स्वरूप से आत्म स्मृति स्वरूप में रहें और शिव बाबा के साथ मन लगा रहे, बस एक साक्षीपन का अभ्यास इसमें बहुत काम करता है। जब ऐसा करेंगे तो विदेही स्थिति क्या होती है वो आपको बहुत सहज रीति अनुभव होती रहेगी। देह के बिना, देह में है पर देह का भान नहीं रहेगा। जैसे आप प्रैक्टिकल देखते हो, रात को नींद करते हैं, नींद शुरू शुरू में कुछ ख्याल चलेंगे इधर का उधर का किसी का, लेकिन जैसे ही गहरी नींद आ जाएगी, गहरी नींद आती है उसके बाद आपको कुछ भी सामने नजर नहीं आता। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी गहरी नींद आएगी, और उसके बाद जब आंख खुलती है तो लगता है इतना टाइम हो गया, और खुद को देखेंगे कितने अंदर लाइट फील करते हैं। जो सोने के पहले कहीं थोड़ा बहुत ख्यालात चलते होंगे, कभी सिर भारी भी हो सकता है, लेकिन नींद करने के बाद एकदम चेंज आ जाती है। तो बाबा की याद में अगर आपका मन टिक जाए, ड्राइविंग कौन कौन करते हैं जरा हाथ खड़ा करें, ड्राइविंग जो करते हैं, जब शुरू में ड्राइविंग सीखी थी आपने उस समय तो बहुत ध्यान रहता था क्लच के ऊपर, स्टीयरिंग के ऊपर, चेंज करने, क्या कहते हैं, गियर चेंज करने के ऊपर सब रहता था। जब अभ्यास हो जाता है, 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, साल भर हो जाता है, 2 साल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उस सब ऐसे चलता है नेचुरल जैसे अपने आप। और आप अपने अनुभव से देखेंगे जब आप ड्राइव करते हैं तो मन कितना लाइट रहता है, बिन बिन सामने सीन देखते भी हो उससे कोई डर भी नहीं लगता। बड़ी सावधानी से ब्रेक पर पहुंच चला जाएगा, गियर चेंज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप उस समय देखिए, मैंने खुद अनुभव किया हुआ है कि जब ड्राइविंग अच्छी तरह से अच्छी तरह से सीख जाते हैं, उसके बाद ड्राइविंग करते हुए शिव बाबा की याद का जो मजा आता है वो पहले नहीं आते। इसी तरह से ये जीवन की जो यात्रा है इसमें भी चलते चलते जब आप एक बार आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या इस जन्म में क्या करना है और उसके अनुसार मुझे रास्ता जो मिला है कितना क्लियर है, भटकना बंद हो गया है। अभी ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान ले रहे हैं, कल को किसी और स्थान पर जा रहे हैं, परसों किसी और जगह जा रहे हैं। आप देखेंगे कि भटकना बंद हो गया। पहले जाते थे, इसका भी सुन लो, इधर भी हो आओ, ये पूजा भी करके आ जाओ, सब कुछ करते थे। अब जब से बाबा के बने तो क्या मन में आया, पाना था सो पा लिया, ऐसी है ना, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, बस एक बाबा दूसरा ना कोई, फिर मन को भटकाते नहीं है। जब इस तरह की स्थिति में आप आ जाएंगे तो बड़ी सहज रीति विदेही स्थिति का अनुभव आपको हर समय होता रहेगा। अब इसके बाद, हालांकि वो पहले लिखा हुआ है, इसके बाद है बाप समान ट्रस्टीपन। तो ब्रह्मा बाप हमारे सामने है, बाबा ने देखो क्या किया, जब बाबा ने साक्षात्कार किए नई दुनिया की स्थापना के और फिर पुरानी दुनिया के परिवर्तन के, मैं परिवर्तन कहता हूं, विनाश शब्द नहीं यूज करता क्योंकि ये दुनिया तो ये रहने वाली है, पर इसके अंदर जो मनुष्य आत्माएं हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है, सात्विकता आ जाती है। जो आज कलयुग के समय में तामसिकता है, तमो प्रधानता है, वो परिवर्तन हो करके सतो प्रधानता आ जाती है। तो बाबा ने वो सब सीन देखे और वो देखने के बाद बाबा का जो उनको हुक्म मिला कि अब आप निमित्त बनो, आपको ऐसी दुनिया स्थापन करने में शिव बाबा का राइट हैंड बनना है ब्रह्मा बाबा को, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सोचा कुछ, कितना टाइम लगा उनको सरेंडर होने में, कहने में आएगा महीना भर लगा होगा, दो महीना लगा होगा, एक साल लगा होगा बस, क्योंकि शिवरात्रि 1936 में बाबा ने ये साक्षात्कार करने शुरू किए थे। आप जानते शिवरात्रि फरवरी मार्च में होती है, बॉम्बे की बात है। और फिर उसके बाद बाबा ने अपने बिजनेस पार्टनर को टेलीग्राम कर दी थी कि अल्फ को अल्लाह मिला, बाबा को तो अल्लाह मिल गया, बे को बादशाही, तुम बादशाही संभालो, और अपना हिस्सा बाबा ने कहा इधर भेज देना, जो जितना मेरा हिस्सा हो वो हैदराबाद सिंध में भेज देना। और उन दिनों में आपस में इतना प्यार भी था, इतनी ईमानदारी थी, ये नहीं कि उनका जो पार्टनर है कुछ ज्यादा अपने पास रख ले, ऐसा भी नहीं है। तो बाबा को जब उसने भेज दिया तो बाबा ने क्या किया, देखो आप आज के युग में अगर किसी को थोड़ा ज्ञान अच्छा हो लग जाए और उसको मन में आए कि मैं बाबा का पूरा ही बन जाऊं, फिर उसके सामने बाल बच्चे आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर उनके हिस्से सोचना शुरू करते हैं, इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसको, بابا نے یہ کچھ نہیں کیا، بابا نے جو کچھ ملا اس کا ٹرسٹ بنا دیا۔ بابا اس کو کہتے تھے جو بابا کا تھا وہ سیڈ منی بن گیا، برہما کماری ایشوری وشو ودیالیہ کی استھاپنا کے لیے۔ تو ایک سال کے بعد ونڈرفل بات یہ ہے، 18 جنوری 1937 اس دن بابا نے اوم منڈلی کے نام پتر لکھا، اوم منڈلی ماتا کے چرنوں میں میں لکھی راج اپنا تن من دھن سواہا کرتا ہوں، سمرپت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد بابا بالکل ٹرسٹی ہو کر کے رہا، ٹرسٹ بنا دیا، مما کو پریزیڈنٹ بنایا، تین ماتاؤں کو اس میں ممبر بنایا اور چار اور کماریوں کو جس میں دادی پرکاش منی چندر منی یہ سب تھے ان کو ٹرسٹی بنا دیا اور خود بالکل نوت ہو گئے۔ کیا کہیں اس کو، ایڈوائزر کی طرح بابا رہے، جیسے کوئی رائے صلاح لینی ہو کچھ بھی ہو تو بابا سے شریمت لیتے رہتے تھے۔ تو بابا نے جس طرح سے کیا ایسا کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں ایسا میں کہوں گا، کیونکہ بہت خیال چلتا ہے بچے کو کچھ دینا ہے، اس کے بچے کو بھی کچھ دینا ہے، وہ بیٹی ہے شادی شدہ اس کو بھی کچھ دینا ہے، کئی باتیں ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے پھر ہر ایک کا حساب کتاب اپنا ہے، ہر کوئی بابا کی طرح ایسا پورا سمرپت ہو جائے تو پھر تو سبھی سری نارائن بن جائے۔ سری نارائن بنے تو اچھا ہے، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جو شادی شدہ ہے نا بھائی ہمارے، ہاں ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو اپنے آپ کو سمپورن کمار سمجھتے ہیں۔ آپ ادھر کمار کہتے ہو اپنے آپ کو، ادھر کمار، تو آپ سوچو شادی جس دن کرائی تھی آپ نے کون سا سوروپ تھا آپ کا، شادی کے دن آپ کا سوروپ کون سا تھا، سری نارائن کا تھا، بہت اچھا سجایا تھا آپ کو، اور کس کو لے کے آئے تھے گھر میں، کس کو لے کے آئے تھے، لکشمی کو، ایسا کہتے ہیں نا ہمارے گھر لکشمی آئی ہے۔ تو آپ سوچئے ستیوگ کی رسم و رواج آج دن تک چل رہی ہے، تو ابھی پھر سے بابا سمرتی دلاتا ہے، بچے صرف ایک سری لکشمی نارائن نہیں لیکن اس سمے جتنے بھی ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے، ان کے سمان ہوں گے، لیکن اس کے لیے سنسکاروں کی سمانتا چاہیے، سری نارائن کے سمان سنسکار چاہیے۔ سری لکشمی، اچھا جو سری لکشمی بننا چاہتے ہیں کوئی ہیں اپنے میں، بھائیوں میں کوئی ہے، ایک بھی نہیں ہے، مائی گڈنس، بہت اچھی بات ہے بھائی، آدھا حصہ تو ان کو دینا پڑے گا نا، اس لیے ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی اپنے کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کو سری نارائن سوروپ میں اس دھرا پر پھر سے آنا ہے، تو اس سے پہلے کون سا سوروپ دھارن کرنا ہے، یاد ہے کون سا سوروپ دھارن کریں گے، فرشتہ سوروپ۔ فرشتہ سوروپ مانا جس کا पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं है। और उनका काम क्या है, फरिश्तों का काम क्या है, सबको सदमार्ग बताना, श्रेष्ठ मार्ग बताना, सबको भगवान की तरफ इशारा करना, सबको जमघटों से बचाना, विकारों से बचाना। तो ऐसा जब आप करेंगे तो प्रैक्टिकल में आप फील करेंगे कि सचमुच एक तरफ बाप समान ट्रस्टी होकर के आप अपना कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब साकार बाबा सामने थे, तो जब बाबा के सामने आते थे तो भाई बहने अपना पोता मेल देते थे, ये है ये है ये है, और बाबा उनको यही कहते थे, आपने बाबा को बता दिया, अब ट्रस्टी होकर के संभालो। तो प्रैक्टिकल में भी ट्रस्टी और स्मृति में भी ट्रस्टी। तो जितना अपने आप को ट्रस्टी महसूस करेंगे उतना न्यारे रहेंगे, जितना न्यारे रहेंगे उतना सबके प्यारे बन जाएंगे। भविष्य जो अपना लक्ष्य रखा हुआ है तो वो बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य है। आम दुनिया में लोग इस चीज को नहीं समझ सकते, मैं आपको बता देता हूं। जो बाबा की रोज मुरली सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले, जिनका इस बात में ध्यान जाता है कि हमें निजी पुरुषार्थ करना है, हमें अपने आप को इतना परिवर्तन करना है, जो आज की लाइफ में मेरे को ये फील हो कि सचमुच देवता जीवन क्या होती है, फरिश्ता जीवन क्या होती है, आज अगर मैं उस चीज को महसूस करूंगा तो मेरा संस्कार मुझे वैसा भविष्य में जन्म दिलाएगा। इस बात को लेकर के बड़ा ध्यान से, और एक चीज विशेष बाबा ने कहा है, बच्चे आप इतने महान हो कि आपका एक एक संकल्प जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना। एक संकल्प व्यर्थ गया माना आपका कितना नुकसान हो गया, एक साल का नुकसान हो गया जैसे। और वही अगर एक संकल्प आपने उसका सदुपयोग किया तो आप सोचिए क्या प्राप्ति हो जाती है, 21 जन्मों तक क्या बन जाएंगे, नर से श्री नारायण बन जाएंगे। तो विदेही भी बनना है, विदेही माना फरिश्ता स्वरूप, निराकारी स्वरूप में चले गए फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उसमें तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो जितना जितना हो सके अपने चार्ट में वो बातें लिखते रहेंगे ना थोड़ी, तो आप देखेंगे चार्ट लिखने से उन्नति बहुत होती है, एक एक दिन में आपको फर्क नजर आएगा, बहुत मजा आता है। और सच्चाई से चार्ट लिखना, गोलमोल करके नहीं लिखना। हाँ कुमारो, जो कुमार बैठे हैं जरा हाथ खड़ा करो, वाह हाल तो सारा कुमारों से भरा हुआ है, बहुत अच्छा। इस पुरुषोत्तम संगम युग को विशेष वरदान है। आप देखेंगे जब से स्थापना का कार्य शुरू हुआ उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट किसका रहा? कुमारियों का और कुमारों का। ये ठीक है कि माता पिता परिवार जो हैं, उन्होंने अपनी अपने सहयोग से यज्ञ को आगे बढ़ाया है, लेकिन जो एक्टिव सर्विस है उसमें कुमारों का बहुत बहुत अहम पार्ट। अगर आपके सामने मिसाल बताएं, हमारे जगदीश भाई कुमार, ठीक है, रमेश भाई पवित्र युगल थे, तो क्या मानेंगे उसको? अनुभवी कुमार ही कहेंगे ना। हमारे आत्म प्रकाश भाई कुमार हैं, करुणा भाई कुमार हैं, ओम प्रकाश भाई जो शरीर छोड़ गए कुमार थे, महेंद्र भाई जिन्होंने बहुत स्थापना के कार्य में इतना सहयोग दिया कुमार, ऐसे और भी, इंद्र भाई दिल्ली के थे कुमार, गिनती करेंगे तो आपको शुरू के कम भी 108 कुमार तो मिल जाएंगे। तो कुमारों का भी बहुत अहम रोल है और अनुभवी कुमारों का तो बहुत ही अहम रोल है, मानना पड़ता है। लेकिन अभी समय ऐसा है, कौन सा समय चल रहा है, हैं? कभी कभी आप पेपर में देखेंगे, न्यूज़पेपर में या टीवी पर या कहीं, कुछ ना कुछ दुनिया में हलचल होती रहती है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है, बाबा ने रोक के रखा हुआ है कि मेरे बच्चे पहले तैयार हो जाएं, तो उसके बाद बटन प्रेस करना, उससे पहले नहीं करना। बटन प्रेस करने के लिए तैयारी करते हैं, लगता है अभी कुछ हो जाएगा, फिर थोड़ा सोडा वाटर हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आया था रशिया के पास कितने एटम बम हैं, हजारों की संख्या में। अमेरिका के पास उससे 40 कम है, बस उनके पास 1286 हैं, तो उनके पास 40 कम कर दो, 1246। फिर उसके बाद और कौन कौन से देश हैं जिनके पास हैं? फ्रांस है, इंग्लैंड है, चाइना है, पाकिस्तान है, भारत है, और भी कोई हैं होंगे, छुपा के भी रखे होंगे कहीं उन्हें। तो ये सब सामने जो बनी हुई चीज है वो खेलने के लिए नहीं है, एक ना एक दिन बटन प्रेस कर ही देंगे, हो ही जाएगा। तो बाबा कहता है, बस आप बच्चे तैयार हो जो मैं आपके लिए रुका हुआ हूं। वो बच्चे तो बहुत तैयारी करके बैठे हुए हैं, उनको भी बाबा बच्चे ही कहता है। तो हमें इस बात का अभी सोचना है कि हम कहते हैं ना, जो लास्ट में हमारी स्थिति होगी उसके अनुसार हमारा भविष्य तय होगा, ऐसा बोलते भी है ना, अंत मते सो गते, अंत समय की जो मत है, स्मृति है, उसके अनुसार हमारी भविष्य की गति। तो हमने जिस तरह का लक्ष्य रखा हुआ है, मनुष्य से देवता बनने का, उससे पहले फरिश्ता बनने का, तो अपने आप में ये देखते रहना है, वो पांच बातों के अलावा ये देखते रहना है मैं फरिश्ता स्वरूप में कितना समय रहता हूं, मैं देवता स्वरूप में कितना समय अपने आप को देखता हूं, दूसरों को कैसे उसी रूप में देखता हूं मैं। ये अगर आप अपने अंदर एक ऐसा चश्मा पहन लें, आजकल चश्मे तो बहुत मिलते हैं रंग बिरंगे, लेकिन ऐसे रंग वाला चश्मा जिसमें आप हरे को देवता स्वरूप में देखना शुरू करो, ब्राह्मण है तो ये पक्का हो जाए कि ये बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण है सो फरिश्ता है, फरिश्ता है सो देवता है। तो एक ही टाइम पर हम किसी को देखते उसके तीनों स्वरूपों को बुद्धि में ले आए तो उनके प्रति भावना क्या बैठेगी आपकी, कितनी ऊंची भावना होगी, बहुत ऊंची भावना होगी। और जब भावनाएं ऊंची होती हैं आप उसमें बहुत प्रेम रहता है, जहां प्रेम है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां समृद्धि है। तो बाबा के बच्चे दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ने वाले हैं, हर तरह से ज्ञान की रीति से धन धान्य संपन्न बन रहे हैं, योग की रीति से बहुत बहुत शक्तिशाली बन रहे हैं, और इसी तरह से विश्व पर राज करने के लिए बहुत योग्य बन रहे हैं, लायक बन रहे हैं। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम सीधे बैठे और बाबा की याद में, बाबा को दिली दिल में याद करते उनको थैंक्स देंगे कि आप हमें क्या से क्या बनाते हो, कहां से कहां ले चल रहे हो, कितना मन में खुशी रहेगी, कितना आनंद रहेगा, कितना जीवन फूलों के समान रहेगा। तो अभी थोड़ा टाइम के लिए बाबा की याद में मस्त हो जाओ एकदम। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा ईश्वरी परिवार वाह, वाह मेरे भाई वाह मेरी बहने, आनंद ही आनंद है।
बाबा तू सतयुग में अब तुम्हें आना।